ये जो जाति में बुद्धि में नहीं बैठता है।
ये जो ज्ञान सुना था जब पहले दिन सुना था हमको कोई माने उसमें ये हम जानते थे, ये हम जानते थे ऐसा मालूम हो रहा कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कहाँ से जाना है किससे जाना है।
हमको तो डेली सुबह यहाँ नहीं आने से वो मन ही नहीं लगता है। सुबह नींद से उठते हैं चार बजे,
ऑफिस जाने में ऑफिस का काम अच्छा नहीं लगता है। हम एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करते हैं, मैंने क्लास क्लास करके ऑफिस चले जाते हैं।
बाबा हम जुगा ना नया लड़की को लेके जा रहे 17 तारीख को, टिकट हो गया
बच्ची के लिए।
तो फरुखाबाद जाएंगे, वहाँ से फिर थोड़ा दिल्ली जाएंगे, मधुबन घूम के इधर चलाएंगे।
हम लोग भर्ती करने गया था तब मैंने फरुखाबाद गया, कम्पिल किया, दिल्ली गया, चंडीगढ़ गया, हाँ जी घूम के आया।
खेत तो बहुत अच्छा लगा, खेत में खेत में हमको बहुत अच्छा लगा,
इतना फल वगैरह है
वहाँ पर खेत में, तो घूमे अंदर में
मयूर जी है बहुत क्या भक्ति किया मैंने स्टूडेंट लाइफ से। जब कॉलेज में पढ़ता था तब भगवान की तो खोज था, क्या शमशान जाता था, मुद्दा में जाता था, ये मंदिर जाता था, वो संत के साथ संग करता था, तो कुछ नहीं मन अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन करने के बाद वो तो फलतू है।
अपन भाई हनुमान को ढूंढने के लिए शमशान है वो
बहुत जगह ढूंढूंगा, इधर में शायद होगा, इधर में शायद होगा।
जन्म की बात वही तरह सर जन्म ढूंढने वाले ढूंढते ही रहे, एक जन्म दो ही ढूंढना है, तिरसठ जन्म ढूंढते रहे।
लेकिन इधर में आके तुम्हें कोर्स शुरू किया ना एकदम शुरू से ही मैंने कोई डाउट नहीं है। उन्होंने एक शब्द हमको बोला जे ये जो नॉलेज है ये टोटली अनकॉमन है,
नॉन
कन्वेंशनल,
मैंने
कन्वेंशनल नहीं है ये जो शब्द बोला हमारा बाह, ये शब्द से पता पड़ता है जे इन्होंने समझा अनकन्वेंशनल नॉलेज। इन्हें भक्ति मार्ग तो सभी एक ही टाइप में है कन्वेंशनल,
लेकिन वो सबको नहीं लगती है जी, तो जो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं उन्हीं को ऐसा महसूस।
हाँ हमारा रिश्तेदार के लिए कितना आदमी के लिए दोस्त के लिए कितना मैसेज हम दे रहा सुनते है अच्छा है देखेंगे, अभी अभी उम्र नहीं हुआ थोड़ा उम्र होने दीजिए।
अब हम तो दुकान में मेरा कस्टमर आता है ना, हम काम करते हैं फ्रिज का,
फ्रिज का मैकेनिक,
तो दुकान में जो भी कस्टमर आता है हम उनको तुरंत मतलब हमको नहीं बोले हम रह नहीं पाते, अरे बाबा भगवान आ गया है तो हर सबको बोलते संदेश देते हैं, कोई को छोड़ते नहीं है, डेली रेगुलर एक दो रेगुलर हम बोलते हैं, सब कुछ सुनता है वाह देता है, बोला अच्छा है बहुत बढ़िया है।
थोड़ा सा सुनाने के बाद जो अच्छा कहता है उसको थोड़ा सा
लिटरेचर
देते
हैं, छोटा छोटा किताब जो जो अनूठी योजना
ज्यादा पैसे की है, अगर अच्छा जिज्ञासु है तो अनूठी उसकी योजना दे दो, लेकिन और एक छोटी सी किताब है, छोटी
किताबें हैं
वो देने से बहुत अच्छा
सा लिटरेचर देते हैं बंगला में,
अपने बंगला में बोई दीजिए ना छोटे पतला बोई है সে বইটা এখন ঘুরছে পড়ছে আমার অফিসে এখানে তো জ্ঞান শুনিয়েছি তো বইটা পড়ে খুব ইন্টারেস্ট পাচ্ছে
যাতে হ্যাঁ খারাপ না ইধর রেডি করে এসে বললাম তো ইনফরমেশন দিয়ে শ্রীরামপুর মে দো হ্যাঁ एक है सुब्रह माता का और एक है आशा माता,
दोनों में चक्कर लगा के चक्कर लगाया माता ने चेंज कर दिया अभी, मकान चेंज किया हुआ है, नई जगह नहीं देखा है, वहाँ से दूर है पहले पुराने मकान से,
पुराना मकान जो था ना फर्ज भी कर रही है, तो हमने सोचो वो जो भी हो जाएगा बोलते हैं घर से
मेरे को बेसिक एडवांस अलग अलग मिक्स कर
एक साथ में। अच्छा बाबा हमने भी सोचा जैसा आत्मा आत्मा तीन लोग देने के बाद ही सीधा सीधा जो चार जो एडवांस कोर्स दे देना है मिक्स कर, हाँ टाइम नहीं है क्योंकि बेसिक कंप्लीट करके फिर एडवांस कंप्लीट करना मेरा बहुत ही टाइम लग जाता
है, टाइम देता नहीं है।
हाँ
तो सुनता नहीं है बाहर वाले तो मतलब सुनता नहीं ज्यादा,
7 दिन के अंदर ही एडवांस दे
दे बेसिक मिक्स करके दे
देने से चिट्ठी की संभावना, टाइम नहीं देते हैं ऐसे चलिए।
इधर से रिसेंटली एक बेसिक भाई 6 वर्ष बेसिक में थे, उन्होंने क्या वो ट्रेन में जाते थे उस समय उसका बाजू में अनवर भाई बैठे थे। अनवर भाई क्या याद है तो आपको ना, अनवर भाई इसी पंडित भवन का कनेक्शन में क्रॉस करते हैं, हाँ आते हैं। तो अनवर भाई क्या क्या वो जो भी
शादी हो गया,
शादी चुना शादी क्या एक बच्चा बहुआ, तो आपने बोला था
गीता पाठशाला पांडव भवन में
आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया अभी शादी होने के बाद कुछ दिन तो ज्ञान में दिन प्रतिदिन इधर में दिन प्रतिदिन तीखा हो रहा और ज्ञान की ऊपर उसका बहुत इंटरेस्ट आ रहे हैं। तो अभी शादी करने के बाद इस कमाई में थोड़ा कमाई करना थोड़ा कम हो रहा है हर, लेकिन उनका अभी आपने जो भी बोला जो वाइफ को भी लेके जुगल को लेके मैंने भर्ती करने के लिए वो जुगल को बहुत कोशिश करते हैं। जुगल एकदम मैंने एक तो मुस्लिम रिलीजन का है और दूसरा थोड़ा मैंने अनपढ़ है और एकदम लगता है ना वो कुछ समझते नहीं है ऐसा, तो इसलिए वो बहुत कोशिश करते हैं। तो कुछ दिन हुआ 15 दिन हुआ तो ऐसा किया तो उन्होंने बोला उन्होंने कुछ रिपोर्ट कर दिया उसके पिताजी को, तो पिताजी आके तो उनका जुगल को और लड़का को छोटा लड़का को लेकर चला गया, बोले तो सब रिलीज नहीं लेगा तो खाना पीना ठीक रीति से नहीं देगा क्या शुद्ध अन्न खाते हो, तो इसलिए लेके चला गया। तो लेके जो भी चला गया वो बोलता था क्या करेगा हम लोग, वो जो भी लेके चला गया तो उनको ही आके देना पड़ेगा, तुम एकदम टाइट रहो बैठे रहो हाँ मत जाओ। तो अभी ऐसे करके वो बैठा हुआ है
तुम्हारी इच्छा थी तुम्हारी पूरी हो गई,
हाँ पूरी हो गई
शादी का इच्छा शादी का इच्छा था
लेकिन वो अनवर भैया अभी क्या है वो सर्विस के लिए बहुत ही ये कर रहा है और बोलते मुस्लिम लोगों के अंदर में क्यों ये नहीं हो रहा है इसके लिए बहुत चिंता करते रहते हैं मुस्लिम कबड़ी में उठा
एकदम जोर से निकले।
तो वो क्या क्या वो ट्रेन में जब जाते थे ना बाबा तो वो जो भाई नया भाई बेसिक का वो आपकी मुरली पढ़ते थे, तो जो भी मुरली पढ़ते थे तो अनवर भाई बाजू से बोला अरे मुरली पढ़ रहा है लेकिन मुरली धड़ पे पहचानते हो, मुझे एडवांस के बात छेड़ दे। तो धीरे धीरे वो जो भी बात करना शुरू कर दिया तो इनको ये बेसिक ये लड़का को ये 26-27 वर्ष की उम्र है 6 साल बेसिक में है तो उनको बहुत ही अच्छा लग गया। बोला हमें ढूंढते थे लेकिन उनका बात सुनकर मालूम हुआ जो हमने नहीं पढ़ा है वो बात वो बोल रहे हैं। तो उसके साथ साथ क्या बोला तुम किधर जाओगे, तो अनवर भाई बोला हम तारकेश्वर जाएंगे बहुत दूर है उसका ग्राम, बोला हम भी जाएंगे रात में। तो रात में क्या वो हिंद मोटर स्टेशन में उतरा घर में जाके बोला जब मेरा एक फ्रेंड का पिताजी का बहुत बीमार है हम जा रहे हैं, तो बोल के उसके घर में चले गए रात में। रात में घर में जाके ना वो एक तो मुस्लिम है ये है मारवाड़ी भाई लेकिन मुस्लिम भाई के घर में चला गया। रात में क्या क्या वो सीढ़ी चालू कर दिया हम लोग का भीसीडी चालू कर दिया, तो भीसीडी सुनते अनवर सोते रहे अरे सारा रात भीसीडी सुना, भीसीडी सुन के उनका एकदम तीर लग गया
पूरा परिवार निकल
गया। हाँ वो तीर लग गया तो उनको जुगल है तो नेक्स्ट डे वो घर में आया, घर में आके उनको जुगल को लेके इधर हमें आ गया तो हम बोले इधर में तो पांडव भवन है बोले थोड़ा संदेश दे दीजिए बस, तो हमने उनको संदेश दे दिया। तो वो अभी
पर माता जी तो है
हाँ
माता जी के पास ले जाइए
हाँ माता जी
उन्होंने बैठ के सुना दीजिए माता है कन्या आती माता जी तो है ऊपर पांडव भवन क्या है ऊपर सुना दीजिए आज नहीं तो कल माता जी सुनाना सीख जाएंगे तो गीता पाठशाला भी हो जाएगी ऊपर गीता पाठशाला नीचे पांडव भवन आगे चल के तो खोलना ही पड़ेगा
बेटा।
वो है वो लखनऊ में नौकरी करता है।
अच्छा।
तो वो लोग देसी में सबको छोटा छोटा छोटापन में लगे गया।
अच्छा।
लेकिन अभी तो वो लोग सब ज्ञान मारने नहीं मानते,
एडवांस
में नहीं आता, देसी में भी नहीं आता,
देसी में
भी नहीं आता, घर में नहीं आता। लेकिन अभी आज का संदेश उसको दे दिया फोन में, वो आया हमारे घर में, मतलब अच्छा सारा दिन बस बनेगा। तो वही उसी का वास्ते वो तो भिखारी यहाँ रहा है, वो करता था उनको खाता है, अभी तो उसी भिखारी लाइन में कर रहा था।
और एक पांडव सुभाष भाई बहुत कम आते हैं। इनका पिताजी कुछ दिन पहले शरीर छोड़ दिया और उसके बाद इसके ना दिन प्रतिदिन इसके हेल्थ इतना खराब हो रहा है, आश्चर्य बात है।
वैसे वो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई तकलीफ नहीं है,
अच्छा।
लेकिन
सभी के माँ बाप शरीर को छोड़ते ही है,
शरीर को छोड़ने सबका ही छोड़ रहे हैं।
मेरा भी पिताजी तो अक्टूबर में शरीर छोड़ गया, अक्टूबर में मेरा भी पिताजी अक्टूबर में चला गया। ज्ञान सुनाए थे हम पिताजी को, ज्ञान सुने भी, मगर ऐसा हो गया उनका यहाँ पांडव ने लिया एक दिन, गोविंद भाई ने ज्ञान सुनाया, उसके बाद ऐसा हो गया ना थोड़ा, मैंने बिस्तर में सो गया था, उठ ही नहीं था, लीवर डेड हो गया। अक्टूबर 28 अक्टूबर को डेड हो गया। तो और हमको चांस ही नहीं मिला जो पिताजी को यहाँ लाएंगे और ध्यान में
अचानक
मतलब लीवर
अचानक नहीं है, बहुत भूख रहा
था, दो महीना
लीवर का बीमारी,
दो
महीने
लीवर
पानी जम गया, पानी जम तो हम तो उस टाइम पे वो पिताजी को हम एक तो मैंने बाबा का पर्ची जो था पॉकेट में रख दिया, हम बोलेंगे आप खाली हरदम सोते बैठते खाली सिर्फ बाबा को याद कीजिए, देखिए आपका अच्छा होगा, तो वो अच्छा बोलते तो सारी ही छोड़ दिया। तो थोड़ा बहुत जानकारी लिया है,
इधर के सब रेगुलर स्टूडेंट है सब,
इसको लेके हम पहले इधर से स्टार्ट किया था, क्या पढ़ते मतलब अब एक तो ऊपर नहीं लेके जाते,
अच्छा
पहले ये हमारा स्टूडेंट है, इसको लेकर बहुत दिन तक 3-4 महीने के बाद, उसके बाद ही तो तारक भाई बोल के एक आता था, वो भी आता था, वो दिन दिन से 3-4 आदमी था, उसके बाद में तारक भाई बोला तुम्हारा इसको भाग दे, वो हम लोग पीछे रहेगा 3-4 मार्जने का, उसी हिसाब से को घर को सब भरा देना था, भर में बहुत टिकट टिकट करके कुछ सारे जाना तो इधर का उसको पूरक करके सब बहुत किसी का चेंज कर, साथ चेंज करने के बाद किसी ख्याल हो गया आपका ऊपर में जो आपको उसको माता कुंडा का आपको सेंटर बनाया, आपको तो बोलने से आपका पूरा सेंटर इच्छा पड़ता रहा बहुत
अभी थोड़े फादर के मतलब अंदर जाने के बाद से जो है थोड़ी सी मतलब
चलता ही है,
फिर भी मतलब लौकिक बाप भी बाप तो होता ही है, मतलब थोड़ा सा जो है निर्भय
में बोलते हैं लौकिक बाप और पारलौकिक बाप, दो ही बाप को दोनों समस्या मिलता है, एक जन्म समस्या है, जन्म जन्म लौकिक बाप से एक जन्म समस्या मिलता है, ये पारलौकिक बाप से अनेक जन्मों का समस्या मिलता है।
पहले क्या था कि एकदम फ्री रहते थे, कोई चिंता नहीं किसी चीज की, कोई भी मतलब कोई प्रोग्राम हो कहीं भी हो तो दौड़ जाते,
अभी भी फ्री रहो,
हाँ अभी वैसे भी
आनंद में रहिए, आनंद अंतरंग बहुत आनंद में रहिए,
अच्छा है आप तो महिला है, हम लोग तो शादी कर लिया था,
आप लोग तो एकदम कुमार है, एकदम
बहुत कुछ कर सकते हैं,
जुगल को समझाना पड़ता है, लड़की को समझाना पड़ता
है, रहती
है। ये भी बाबा की कृपा ही है, मतलब कुमार रहना भी एक बहुत बड़ी बात है,
बड़ी
बात है,
ये
इनका जो जुगल लड़की अपने परमिशन देता हम इनका घर में लेके कोर्स कराए तो ये कोर्स कंप्लीट हो गया अभी 17 अप्रैल अभी भर्ती करने के लिए जा रहे ये लेके जा रहे हैं जुगल और मैंने लड़की क्लास 9 में परमिशन लेटर भी मिल गया कृष्ण भाई ने साइन करके दे दिया 17 अप्रैल जा रहे हैं और तपन भाई का जुगल का थोड़ा प्रॉब्लम है बहुत तपन भाई का जुगल एकदम नॉन इंटरेस्टेड है ना इन्होंने बहुत
मोटा मोटा मोटी मोटी बातें
बाबा बोलते हैं जो मोटी मोटी बातें मैंने धीरे धीरे छोटा छोटा बातें करके उनको बुद्धि में डाल दीजिए मैंने बुद्धि पे वो बसान आस्ते 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 चेंज करने जो इनका भी जुगल है एक ही लड़की है 12 में
पढ़ी
गाँव के जैसे अपने को खाना बनाना नहीं
आता ऊपर ने खाना बहुत सहज कर दिया उससे भी ज्यादा सहज कर दिया बाबा ने मुर्गी में बोल करके दाल चावल आलू सबसे अच्छा भोजन है सब विटामिन से इसमें फुल है इकट्ठा कुकर में 3 बटनों में डाल दो 10 मिनट में तैयार हो अब कुछ मेहनत नहीं है
दाल चावल आलू तीन एक साथ में डाल देने का ना
दाल अलग बर्तन में चावल अलग बर्तन में
अलग अलग बर्तन
तीन बर्तन आते हैं कुकर के अंदर रखते हैं दाल चावल आलू तीनों अलग अलग रहते हैं तीनों को मिक्स करके आदत पड़ जाएगी तो और कुछ अच्छा ही नहीं रहेगा
अपना दिन दालू चल रहा है
फिर भी अगर नहीं चलता इनको शुगर है उनके लिए तो दाल में वो डाल सकते हैं क्या नमक
सोयाबीन बुरी
नहीं 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 आटा थोड़ा सा मार लिया और मारने के बाद उसकी छोटी छोटी वो चट्टी बना के दाल में डालना उबलते समय वो अपने आप पक जाए रोटी बनाने की दरकार नहीं
ओनली दाल में उस छोड़ देगा
हाँ पतली पतली ऐसी ऐसी बनाए पेड़े जैसे पेड़े जैसे बनाए और जब जब वो उबल रहा है तो पेड़े से ढक्कन खोल के और उबल के समय दाल बड़ा
थोड़ा प्रेशर कुकर बंद करिए
फिर प्रेशर बंद कर दिए
तो ही ये बस वो खाने से हो जाए
रोटीन बन जाए
हाँ
रोटीन हो जाएगा और कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा
राइस खाने का भी जरूरत है वो खाने से
आपने तो राइस ना खेली हुआ
आपके लिए तो दाल और दाल की तो नहीं है वही चावल दाल और दाल की दाल में डाली हुई रोटी
आप आलू भी नहीं चलेगा चावल के लिए
चावल
कितना बड़ा वही पेड़ पेड़ जैसा
पेड़ नहीं उसको थोड़ा चपटा कर दो
लेकिन साइज कितना है इतना
छोटा छोटा
हरी मिर्ची मैंने ज्यादा खाना ठीक नहीं है
हरी मिर्ची खाने से कुछ नहीं होता हरी मिर्ची खाना तो ठीक ही
है खा सकते हैं दोपहर में
मैंने छोड़ा था एवं इसलिए होता
है बनाई
अपन भाई
पानी भूलेगा नहीं
भूलेगा नहीं
भूलेगा नहीं
लेकिन वो पक
जाएगा अच्छा लगेगा रोटी से भी ज्यादा अच्छा
वही अच्छा है
दाल में चाहे तो
सब्जी भी डाल सकते हैं
अलग से उबालना चाहिए
बस हमें बड़ा रोटी बनाने का कोई जरूरत नहीं है
बिल्कुल नहीं
अच्छा होता है
अन्न का प्रभाव बहुत ज्यादा है
बहुत ज्यादा है
दूसरों को बना हुआ खाएंगे तो उसको पता नहीं कैसे फैब्रिकेशन बना सकते वो असर करेंगे अपना हुआ बनाया हुआ वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है माँ के हाथ से भी ज्यादा बना हुआ अपने आप का बना हुआ अच्छा माँ को भी अंदर इच्छा रहती है हमारे बच्चे की शादी हो जाए ये हो जाए वो हो जाए
ऐसा करता है
बाबा आज तो प्रॉब्लम हो गया, एक हमारा दोस्त आ गया इंटरनेशनल लेवल जहाज का नौकरी में था, जहाज का सेकंड इंजीनियर था, हम भी जहाज का इंजीनियर का फायर नहीं है सेकंड था, और वो आ गया इंजीनियर का फायरमैन था, फायरमैन भी एक दो साल के बाद घर आ गया, घर में रुकता है लेकिन वो ज्ञान भी नहीं चलिए उसका हर हम हमेशा बोलता तुम ज्ञान में चलो, ताकि उसका शादी भी हो गया, उसका नाती नाती हो गया, सब एक्चुअली
सब इच्छाएं पूरी हो गई,
हाँ सब इच्छा पूरा हो गई, खाली अकेला कला घूमता कभी वृंदावन कभी मुक्त हो गया, आगे बोलता है बीमार घूमना घूमता गया, बहुत लाठिया दिन आज का दिन भी
हमारे फ्री हो गए हम,
हाँ हम बोला तुम बाबा से परमिशन लेगा, बाबा तुमसे मिलने से मानता है, तो हम बोला
हमारा एक नया आत्मा
आज हम लेके ले भी आया, लेके ले भी आए, पहले लाख का हिसाब कर रहा है, कोई मतलब है कोई, हम लोग तो लेके नहीं आए, फिर लेके भी नहीं जाएंगे, महामाया ने हम लोग तो
जाएंगे, जितना ईश्वर को पहचानेंगे
उसको ले
जाएंगे, बहुत कुछ लेके जाने वाले
हैं आप, उसको सिर्फ ले जाना है और कुछ नहीं ले जाना है, लेकिन हम लोग जो इतना दुख
पास्ट इज
सब एवरीबॉडी इज दुख, लेकिन ये दुख कैसा हम लोग को जाएगा मन से तो नहीं जाएगा, सब चाहिए, चाहे वो चाहे से चाहे मोबाइल चाहिए टीवी चाहिए,
नया है ना
भाई है ना बाघा साहेब, हाँ जी बाघा चौधरी साहब अभी ठाकुर, हम गया था वृंदावन में उधर में थोड़ा रंग खेलने को गया था, तो रंग खेलने को सर हम सोचा थे अरे आने को टाइम हमें नहीं, हम थोड़ा इधर में आने को है कहीं इधर ही चला घर नहीं गया,
बहुत दिन से बाद आज आए
हाँ बहुत दिन, लेकिन हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं मिलती हमको,
मुक्ति का मतलब क्या है,
मुक्ति हम जितना सा बाह्यिक विषय वस्तु है इससे थोड़ा मुक्ति चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए,
शरीर छूट जाता है तो मुक्ति हो जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी,
मुक्ति मतलब कम से कम है,
मुक्ति का मतलब ये जो फैलावा फैला हुआ है धंधा धोरी फैला हुआ है इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जब शरीर छूट जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी,
वो तो उनका बात है,
अरे नहीं नहीं वो भी इंक्लूड है,
इंक्लूड है, लेकिन हमको इतना सोचना है कि हम किसी का चीज में हमको बस नहीं होना चाहिए,
ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि आप ये नहीं समझ रहे हैं कि हम हैं क्या, आप जो है वो ये शरीर नहीं है, ये पांच तत्वों का पुतला तो आज है कल नहीं रहेगा,
कल नहीं रहेगा,
लेकिन आप एक आत्मा है जिसकी रोशनी आंखों से निकल रही है, ये आंखों से निकलती हुई रोशनी ही बता रही है कि आप कोई और चीज है, वो रोशनी जब निकल जाती है तो ये सब रहेगा लेकिन आप नहीं रहेंगे,
ये तो पंचभूत में मिल जाएंगे,
ये पांच भूत में मिल जाएगा लेकिन आपकी मुक्ति नहीं होगी,
मुक्ति वो बहुत दूर का बात है,
बहुत दूर का बात है, आप वृद्ध हो रहे
नहीं, मुक्ति तो नहीं मिलेंगे जब तक उनका छुटकारा नहीं मिलेंगे, उसका हमको मुक्ति कैसे मिलेगी,
तो ऐसे ही सबसे पहली बात समझने की है कि हम तो आत्मा है,
आत्मा
ये घड़ी घड़ी दूसरे को बात करते समय किसी से मिलते जुलते समय ये पक्का याद रखने की चीज है कि हमें यहाँ टीका भले न लगाए लेकिन आत्मा किसी दिन टिके, कि हम वो स्टार आत्मा है जो आत्मा यहाँ टिकी हुई है और हम आत्मा इस आत्मा से बात कर रहे हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो पेट की तरफ थोड़ी देख के बात करते हैं, बात करते हैं तो कहाँ नजर जाती है, दोनों आंखों के बीच में, इसका मतलब आत्मा वहां विराजमान है, उस आत्मा से हम आत्मा बात करते हैं, हमारा कोई कनेक्शन इनके साथ है पूर्व जन्मों का, तो ये हमारे सामने बैठे हैं हमको देख रहे हैं हमसे बात कर रहे हैं, सभी आत्माओं के साथ हिसाब किताब, किसी के साथ दुख का हिसाब किताब आ जाता है उससे छुटकारा, दुख कोई नहीं चाहता,
नहीं दुख तो रहेंगे, दुख नहीं रहने से सुख का मालूम नहीं पड़ेगा ना,
सुख तो चाहते हैं सब,
सुख चाहते हैं सब,
ये कोई नहीं चाहता हमें सुख न मिले,
सुख चाहते हैं
सुख मिले लेकिन दुख न मिले,
दुख न मिले
तो दुख से छुटकारा हो जाना, अशांति से छुटकारा हो जाना, वो ही हमको चाहिए, और ये चाहने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है,
मुक्त तो होता नहीं,
होएगा होएगा, आत्मा का ज्ञान परमात्मा की सिवाय कौन दे सकता है,
उनका दया होने से तो हम मिलेंगे
नहीं। अब क्या पता आपके ऊपर दया हो रही हो लेकिन आप चांदी निकाल सकते हो और संगी साथी तीन तीन इकट्ठे हो गए एक ही जैसे वो भी उसी लाइन
जहाज में उड़े अपनी काज करे उड़े पर आमी काज करी আমি এখানে এসে ওনার এখানে এই বাড়িতে পাণ্ডব ভবন তৈরি হয়েছি ঈশ্বরীয় পাণ্ডব ভবন আর আপনি আজকে এসছেন এবং আপনি যার সঙ্গে কথা বলছেন এই বাবার সঙ্গে যে সে কি এখন আপনি বুঝতে পারছেন না কিন্তু আপনার উপরে যে কত কৃপা আছে সেটা ধারণার বাইরে কারণ আজকে হঠাৎ আপনি এতদিন পরে আসবেন কেন ক বছর পরে এলেন বছর তিনেক বছর খানিক পরে এলেন এমন দিন এলেন যেদিন বাবা এখানে আজকে এখানে
আসছে আজকে আমি যে এখানে এলাম
এটা আশ্চর্য ব্যাপার
আশ্চর্য ব্যাপার না আমার যাওয়ার কথা ছিল কন্যাগর বন্ধুর বাড়িতে ওই পালের বাড়িতে ওখানে ফোন করলাম বলে আজকে আসবে না বাড়িতে শরীর খারাপ তুমি এসো না আমি চিন্তা করলাম কোথায় যাই তাহলে ঠিক আছে আমি যাবো না তখন ধরন দিন এখানেই আস
আর জানেন যারা ঈশ্বরীয় জ্ঞানে চলে না তাদেরকে আজকে আমি বলিনি কাউকে আপনি একমাত্র ব্যক্তি যে ঢুকতে পেরেছেন বাবার সামনে বসে আছে কৃপা অলরেডি আছে এখন বাবার কাছে আপনি জিজ্ঞেস করুন যে কিভাবে কি করবেন এবং সেগুলো ভালো করে মন দিয়ে শুনে সেটা করুন
আমি এখন মুক্তি চাই মানে এই যে সংসার হ্যায় মায়া
মুক্তি সে ভি আর এক আর উঁচি চিজ হ্যায় জীবন মুক্তি জীবন রহে জীবন রহে জীবন মে রহতে রহতে হমকো সুখ মিলে দুঃখ না মিলে ও
হ্যায় দুঃখ কভি পরোয়া নেই লেকিন এসা দুঃখ চাহিয়ে কোই
দুঃখ তো আবি তো এটম বম বনে হুয়ে পড়ে হ্যায় হিন্দুস্তান কি ইয়ে হালত হ্যায় হিন্দুস্তান দুনিয়া কা সবসে পুরানা দেশ হ্যায় ইস পুরানে দো চিজ জিতনি জ্যাদা পুরানি হোতি হ্যায় উতনি জ্যাদা দুঃখদায়ী হো জাতি ये इंडिया में जितना ज्यादा दुख है उतना और किसी भी देश में इतना दुख नहीं है तो ये जो दुख है दुख का मूल कारण ये है कि यहाँ पापाचार बहुत बढ़ चुका है
बहुत बढ़ चुका है बढ़ता रहे और बढ़ता
और ज्यादा बढ़ रहा है इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा देखो इंडिया में जितने हैं धर्म फैले हुए इतने धर्म और किसी भी देश में नहीं फैले हुए
जितना धर्म इंडिया में है
और धर्मों के आधार पर जो विद्वेष फैला हुआ है आपसी मनमुटाव उतना और किसी भी देश में नहीं फैला हुआ है जितनी जातियां भारतवर्ष में फैली हुई हैं
जितनी जातियां
इतनी जातियां और किसी भी देश में नहीं फैली हुई और जातियों को आधार पर लेकर के एक दूसरे से मनमुटाव लड़ाई झगड़ा किसी भी देश में नहीं भारतवर्ष के अंदर जितनी भाषाएं फैली हुई हैं
इतना भाषा
बंगाली धर्म पंजाबी अब यहाँ देखो पंजाबी को दिखाई पड़ता है यहाँ बंगाल में पंजाबी दिखाई
देता
है बहुत कम बंगाली नहीं दिखाई पड़ते
हरियाणा के
हरियाणा वही घरे लिखे দুটো দিদিন তো ওই ঘরে
রেখে রেখে তাই
ওই ঘরে রেখে বাবার ঘরে হ্যাঁ
ইন্ডিয়া মে জিতনা স্টেটিজম হতনা আর কিছু ভি দেশ মে স্টেটিজম নেই মেরা রাজ্য তুমারা রাজ্য ইয়ে রাজ্য ইস রাজ্য কা বটবারা হোনা চাহিয়ে এসা হোনা চাহিয়ে মানে খন্ড 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 হতে চলে যা
রহে এক হি ছোটা গ্রাম মে কিতনা তরিকা কা ভাষা ভি হ্যায় আসাম মে ভি হ্যায় এক হি গ্রাম মে
এক হি গ্রাম মে তো ইয়ে ইয়ে দেশ কে জো তরিকে হ্যায় ধর্ম জিতনে ধর্ম ভারতবর্ষ মে হ্যায় ইতনে কিছু ভি দেশ মে নেই হ্যায় আর দেশো মে এক হি ধর্ম পনপরা হ্যায় ইয়া यहाँ दिल्ली में देखो दिल्ली तो दर्पण है पूरे देश का उसी बराबर हिस्से में क्रिश्चियंस भी है बराबर हिस्से में मुस्लिम भी है बराबर हिस्से में सिख भी वहाँ देखने को मिले
क्योंकि
राजधानी कैपिटल
कॉस्मोपॉलिटन से सुने
लीडर रहिए बाबा का बात सुनते रहिए
सर्विस
करने के लिए हम चाहे थे अरविंद भाई को वहाँ जाके लेके जाके खड़ा कर देंगे सर्विस के लिए कुछ संदेश देने के लिए
জল বেরোয় মানে বাবা যখন পৃথিবীতে আসে না জটিল তত্ত্বকে জলের মতো সোজা করে দিয়েছে বুঝলেন যখন এখানে এসে আর কি আমাদের কোর্স আছে হ্যাঁ সেই কোর্সটা যখন করবেন না এখন একদম জলের মতো সোজা যে জ্ঞানটা প্রচন্ড জটিল ছিল, মানুষ কিছুতেই বুঝত না, সেটা একেবারে আট ন বছরের বাচ্চাও পর্যন্ত বোঝে, সহজভাবে করে দিয়েছে। আজকে আপনি সেই বাবার স্থানে এসেছেন, এরকম অনেক ব্রাঞ্চেস আছে ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
সবসে জ্যাদা যে ধর্ম কাজ জুনুন হতা মুসলমানো মে ধর্ম কে জুনুন মে আকে পাগল বন জাতে হ্যায়। আদি সে
সপোজ মকান বেচ কর
রেজিস্ট্রেশন নেই
রেজিস্ট্রেশন নেই
সরকার রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করতে
বিজেপি গভর্নমেন্ট
তো সপোজ খরিদা লেকিন রেজিস্ট্রেশন করলে নেই পায়গা তো
এগ্রিমেন্ট কর এগ্রিমেন্ট লিখা দো জমিন কে উপর জো বেচনে বালা হো লোন নেই লে সকতা লিজ পর নেই উঠা সকতা মকান কো কিসি দূসরে কিরায়ে পর নেই দে সকতা হমেই আগর রহনে কা অধিকার সিরফ হমকো হি মিলেগা এসে এসে এগ্রিমেন্ট পে বাত কর হেড করা দো ফর হটানি লিখা দো দো আদেশ সাইকুল দরওয়াজে দে দিই দেখনে ওয়ালে কে দরওয়াজে কে ঘর কে और सदस्य उनसे मुआवजे से सेटलमेंट देंगे नोटाइज करा लो सर एग्रीमेंट नोटाइज करा लो और पटानी तो होती ही है गवर्नमेंट की ओर से मुआवजे से सेटलमेंट नोटाइज करा
सपोज यू
सेल्डी सेल्डी लिखा वो भी नोटाइज करो लेकिन ढेर सारे काम
গভর্নমেন্ট প্ল্যান হ্যাঁ
গভর্নমেন্ট আজকাল খুব ফসি হুই আপনে বনায় হুয়ে কানুন ফসে হুয়ে এক তরফ কানুন বনানে বালে বনাতে হ্যাঁ দূসরি তরফ তোড়নে বালে সামনে হি সামনে
হ্যাঁ
কানুনি তোর পর তোড় রে
খুব বনাতে ওই
তোড়তে
সোচ সমাজ কে আঁকে কোল করতে চলে কাটায়
বাবা আমার অন্তিম ইচ্ছা হ্যাঁ
অন্তিম ইচ্ছা
হ্যাঁ আমার অন্তিম ইচ্ছা হ্যাঁ যে আমার যে জায়গা হ্যাঁ যাদবপুর মে ছোটা কা ছোটা জায়গা খালি পড়া হুয়া হ্যাঁ মানে সোচা হুয়া পর এক মন্দির হম দিখাঙ্গে
বতাইয়ে
মহেশ্বর বিষ্ণু তীরও মন্দির হমকো বনানে কো মন মে আয়া হ্যাঁ
বিশ্ব শঙ্কর কাজ মন্দির বনাইয়ে মন্দির মে চৈতন্য কো দিখাঙ্গে ব্রহ্মা বিশ্ব শঙ্কর জড়মূর্তি কো দিখানা আপ পক্কা কর দিয়ে
চৈতন্য জড়
মন্দির মে আপ ব্রহ্মা বিশ্ব শঙ্কর কী জড় মূর্তিও কো বৈঠাঙ্গে চৈতন্য আপনি সমঝ মে আয়গা তো উনকো বৈঠাঙ্গে
যদি আপনার কাছে যদি আপনার সামনে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর চৈতন্য এসে যায় তাহলে আপনি বসাবেন, আপনার বুদ্ধিতে বসেও যাবে, যুক্তিতে আপনি বুঝে যাবেন যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর চৈতন্য এসে গেছে। তাকে আপনি জীবন্ত তাদের বসাবেন না জড়মূর্তি বসাবেন? আপনি বলুন,
আপনি যেটা বলেছেন ওটা দেখা করা সম্ভব নয়।
এক মিনিট, মনুষ্য মন কা উপয়োগ নেই করেগা, বুদ্ধি কা উপয়োগ নেই করেগা তো কোন জানবর করেনি? মনুষ্য ইয়ে ফেসলা নেই করেগা কি ব্রহ্মা কৌন, বিষ্ণু কৌন, শঙ্কর কৌন, তো কৌন ফেসলা করেগা? আজ কি দুনিয়া কে রাক্ষসী মনুষ্য করেগা? দেবতা কি দুনিয়া মে হই নেই? মনুষ্য বনতা ইয়ে মন চিন্তা বদলনে বালা, মন কা উপয়োগ করনে বালা। তো আপ তো মন হ্যায় আপকে পাস?
মন
মন মানে ইচ্ছা হ্যায় আপকি? মানে মন তো হ্যায়। তো মন বুদ্ধি কে সাথ আপ ফেসলা খুদ কর সকতে হ্যায়, সির্ফ বেঠ কর কি সমঝনে কি বাত হ্যায়। जब इतने लोग फैसला कर रहे हैं, सबने फैसला कर लिया कि हाँ ब्रह्मा भी है प्रैक्टिकल में, विष्णु भी है प्रैक्टिकल में, शंकर भी है। अगर न होते तो हमारा जो तिरंगा प्यारा किया कपड़े का झंडा विजय विश्व करता है? विश्व की विजय कपड़े का झंडा नहीं करता है। वो चैतन्य हुए हैं प्रैक्टिकल में, जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की है।
सबसे बड़ा है चैतन्य, चैतन्य नहीं होने से कुछ नहीं होगा। हम सोचा है लेकिन अभी वो चैतन्य क्या करेगा, ऊपर वाला क्या करेगा उनका मालूम, लेकिन हम मन में सोचा है।
अगर आपको मालूम पड़ जाए तो
जो भी आपने बुझे जान जो चैतन्य ऐसे गए चैतन्य जो आपने पे जान तब की कर दी,
तब हम तो मंदिर बनाने को हमको मन में आता है, मन में आया है। एक मंदिर हम बनाएंगे उसमें हमारा चैतन्य भी रहेंगे, हमारा मूर्ति भी रहेंगे,
दोनों रहेंगे।
मूर्ति नहीं रहने से तो हमारा चैतन्य भी नहीं आएंगे।
ये तो मूर्ति ही है।
हाँ।
ये मूर्ति है, जब इसमें आत्मा है तो चैतन्य, आत्मा निकल जाएगी तो ये मूर्ति है।
मूर्ति सब हो गया, लेकिन मूर्ति को शरण करके
मूर्ति को मानेंगे? मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चैतन्य आत्मा को नहीं मानेंगे?
इतना हजार जो मूर्ति बन रहा है
वो बन रहा है, लेकिन वो बनने के बावजूद भी बनाने वाले बना रहे हैं। बनाने वाले बना रहे हैं किस आधार पर? जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, शासन लिखा है। और शास्त्रों को बनाने वाले भी मनुष्य मनुष्य ही थे, लेकिन जिन्होंने वो शास्त्रों की परंपरा और उनकी मूर्तियों की परंपरा चलाई है, 2500 साल से वो हिस्ट्री मिल रही है मूर्तियां बनाने की, शास्त्र बनाने की, लेकिन उनके रिजल्ट में दुनिया में प्यार और स्नेह सहानुभूति ये अच्छे गुण हैं वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं?
वो तो नहीं घट रहा है, सहानुभूति
घट रहा है,
घट रहा है ना,
घट रहा है।
इसका मतलब
मूर्ति बन रहा है लेकिन ये घट रहा है।
इसका मतलब चैतन्य आत्मा को हम पहचानेंगे तो ये चीजें बढ़ेंगी।
और एक बात चाहिए, घट रहा है बात ठीक ही है, लेकिन हम जब उन जगह का नाम बोलेंगे हमारा मेमोरी का विषय जाना वृंदावन, वृंदावन वृंदावन में हम जितना घूमा है देखा है ये एक एक आदमी मैंने एक एक करोड़ों करोड़ों पोती इतना अच्छा से सब मंदिर बनाया, उसका मंदिर, उसका एकोमोडेशन, उसका मैंने सब कुछ है, देखने से भी दिल में भक्ति आता है। बहुत सा आदमी भी उधर जाता है, तो यही जो जाता है उधर में आता है तो इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब ये है कि एक परंपरा ट्रेडिशन चली आ रही है।
हाँ।
वो ट्रेडिशन के ऊपर सब चल रहे हैं, शायद ऐसा करने से हमको मुक्ति मिल जाए, लेकिन अंधश्रद्धा से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान है जो है वो ज्ञान देता है, अंधश्रद्धा नहीं देता है। ज्ञान अलग चीज है और अंधश्रद्धा अंधविश्वास अलग चीज
है। अलग चीज है लेकिन वो एक ही आदमी को मिलता है जो
एक वही को नहीं, सारी सृष्टि की मुक्ति करने वाला एक ही परमपिता
को, एक ही परमपिता को एक ही आदमी को मिलता है जो ध्यान से तो ज्ञान से उसको मांगता है।
आप मांगते
वही तो बोल रहा
है, हम भी मानते थे, हमें अब अनुभव हो रहा है कि हम मिलने के रास्ते पर, आप सिर्फ वो समझ रहे हैं, ये तो ये तो हवाई खीर है, ऐसा हो नहीं सकेगा, आप ऐसा समझते हैं, लेकिन हो सकेगा। आज आप ऐसा करें, दो दिन के बाद, दो दिन में ही है तो सात दिन का कोर्स, दो दिन के अंदर ही आप कहेंगे हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, हमने पा लिया। अगर ये सब अनुभव कर सकते हैं तो आप भी अनुभव कर सकते हैं।
मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन हम तो
चैतन्य की बात है, आप जड़ मूर्ति की बात कर रहे हैं, हम तो चैतन्य की बात करेंगे।
चैतन्य
की ये जो अपने यहाँ भारतवर्ष का जो तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा में तीन कपड़े हैं, तीन कपड़े, ये कपड़ा किस बात की यादगार है? ये शरीर रूपी वस्त्र है, क्या ये शरीर है वस्त्र, और इस वस्त्र को पहनने वाली है आत्मा, क्या? तो ये तीन प्रकार के वस्त्र हुए हैं संसार में, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा जो वस्त्र है हरा ही हरा हरा हरा, उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है राम राज्य आएगा, हरियाली आएगी, हरित क्रांति आएगी, स्वर्ग आएगा स्वर्ग आएगा, यही बुद्धि में बैठा हुआ है। विष्णु दूसरी मूर्ति है, वो स्वर्ग का देवता निश्चित पक्का, और एक है उससे भी ऊपर, हमें न नरक में और न स्वर्ग में, दोनों हमारे लिए एक जैसे हैं। स्वर्ग मिल जाए, सुख की दुनिया मिल जाए तो खुश नहीं, और दुख की दुनिया मिल जाए तो उन्हें दुख नहीं,
दुख नहीं,
उन्हें शांत स्टेज में रहने वाले, वो है शंकर।
शांति देवा,
लेकिन वो जगह में आने,
वो है शंकर। लेकिन जो शंकर है वो महादेव कहा जाता है, ब्रह्मा से भी ऊंचा देव विष्णु, विष्णु से भी ऊंचा देव महादेव। लेकिन महादेव जो है वो महादेव शंकर का नाम ही सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताएं हैं, लेकिन किसी का नाम शिव के साथ नहीं जुड़ा जाता। शिव वो आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में आती ही नहीं कभी। हम और आप जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, फिर शरीर ले रहे हैं, फिर शरीर छोड़ रहे हैं, फिर शरीर ले रहे हैं, लेकिन वो आत्मा ऐसी है शिव जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। वो भी अगर जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो हमको छुड़ाने वाला
कोई।
तो शिव आत्मा अलग है और शंकर की आत्मा अलग है। शिव है परमपिता परमात्मा और शंकर है देवता। 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचे से ऊंची कोटि का देवता है शंकर। तीन देवताओं को अगर हमने पूरी जानकारी कर ली तो समझो सच्चा मंदिर बनाने में हम सहयोगी बनेंगे, उससे दुनिया स्वर्ग बनेगी। और वो परमपिता परमात्मा शिव ही इस सृष्टि पर आकर के नरक को स्वर्ग बनाता है, न इब्राहिम इस्लाम धर्म स्थापन करने वाले, न महात्मा बुद्ध, दुनिया में इतना बड़ा बौद्ध धर्म फैला हुआ है उन्होंने भी स्वर्ग नहीं स्थापन किया, न क्राइस्ट, दुनिया में इतने बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस फैले हुए हैं देश देश अंतर में, न उन्होंने पैराडाइज स्वर्ग स्थापन किया, न मोहम्मद, न गुरु नानक, न शंकराचार्य, कितने बड़े बड़े महान धर्म पिताएं हुए लेकिन किसी ने भी स्वर्ग बना के नहीं दिखाया, सब इसी दुनिया में मिट्टी चाटते चले गए। कौन बनाता है? उन धर्म पिताओं का भी, उन बापों का भी बाप जो परम पिता है, इसको वो भी मानते हैं गॉड फादर। वो ही जब इस सृष्टि पर आता है तब इस सारी सृष्टि के हर धर्म की आत्माओं को चुनता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ हर धर्म में होते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें अच्छाई न हो, कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग न हो, तो हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माओं को चुन करके फिर उनको संगठन तैयार करता है, उस संगठन से फिर नई दुनिया की दुनिया में थोड़ी सी लोग रहेंगे, बाकी सब एटम बमों की आग में बस वो।
तो सभी सृष्टि का नियम ही ऐसा ही है,
नियम लेकिन वो टाइम अभी आ गया। आज से 70 साल पहले में एटम बम बने थे और न भगवान इस सृष्टि पर आया, दोनों ही काम हो रहे हैं, चल रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट भी मान रही है, यहाँ के हिंदू लोग भी मानते ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर, मानते हैं ना, इतना ही नहीं मुसलमान लोग भी उन फैसलाओं को मानते हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में थे, उस आदि पुरुष को मानते हैं जो आदि पुरुष सृष्टि के आदि में था, अपने यहाँ कहते हैं उसको शंकर, मुसलमानों में उसको कहते हैं आदम, क्रिश्चियन में उसको कहते हैं एडम, जैनियों में उनको कहते हैं आदिनाथ, माने सृष्टि का आदि पुरुष एक ही है जिसके आधार पर ये सृष्टि की शुरुआत हुई। उस आदि पुरुष में वो शिव सुप्रीम सोल जो ज्योति बिंदु है सूर्य जन्मण के चक्र में आने वाला वो प्रवेश करता है और प्रवेश करके सारा ज्ञान सुनाता है। ज्ञान का मतलब है अंधश्रद्धा नहीं सिखाता है, एक एक बात का कारण कार्य का विश्लेषण करके बताता है। अंधश्रद्धा मनुष्यों ने सिखाई है, मनुष्य गुरुओं ने सिखाई है, रावण के दसी सोते थे, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, ऐसी ऐसी जो बातें हैं वो मनुष्यों ने सिखाई है, भगवान इस तरह की बातें जिनका आगा पीछा कुछ है ही नहीं वो नहीं सिखाता, वो तो हर बात को क्लियर करके बताता है, ये बात ऐसे, ये बात ऐसे, ये बात ऐसे।
जो ज्ञान हम लोग सुनते हैं देने को लिए जो दिमाग होना चाहिए वो तो होता नहीं है,
दिमाग होने के लिए ही तो भगवान आकर के अभी बता रहे हैं,
बता रहा है कि दिमाग में तो घुसता नहीं है,
तो कारण बता रहे हैं तरीका क्यों नहीं घुसता है। अभी दिमाग में घुसा हुआ है गू और मूत्र की सृष्टि, क्या टट्टी पेशाब में जो रमे रहते हैं ना वह बड़ा सुख मानते हैं, वो जो सृष्टि है वो दिमाग में भर गई, जिस दिमाग में टट्टी पेशाब भर गई हो उसमें ईश्वर का ज्ञान बैठेगा, इसलिए भगवान इस ज्ञान की एक शर्त है कि 7 दिन कोर्स तो ले लेकिन 7 दिन पवित्र जीवन मिलता है, क्या जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्रों ने अनुष्ठान वगैरह बनाए हैं तो 7 दिन रामायण की कथा करेंगे, भागवत की कथा करेंगे तो बड़े पवित्र होकर के और 7 दिनों में विकारी जीवन नहीं बिताएगा, स्त्री पुरुष अलग अलग रह करके और मनुष्य बनाए हुए शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन अभी तो भगवान आकर के खुद स्वयं ये नियम बना रहे हैं कि 7-8 दिन अपनी बुद्धि को पक्का कर लो, दृढ़ निश्चय बनाओ कि हमें ये इससे संबंधित विकार है जिसे हमारी बुद्धि को नष्ट कर रखा है ये हम भोगेंगे, बस उसी में 7 दिन के अंदर की तपस्या में ही ज्ञान बुद्धि में बैठ गए और एक बार मन में बुद्धि में वो बात बैठ गई, बुद्धि ने वो बात कैच कर ली, फिर उसके बाद चल पड़ेंगे
कैच करेंगे तब
ना, अरे जनता क्या नहीं कर सकती
है, लेकिन मनुष्य जन्म में ऐसा है कि हम लोग का
अच्छा एक बात बताइए, एक 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 बात, निगेटिविटी ज्यादा अच्छी है या पॉजिटिविटी ज्यादा अच्छी है, पॉजिटिव संकल्प करना ज्यादा अच्छा है या निगेटिव संकल्प करना ज्यादा अच्छा है, निगेटिव माने ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल है
का जी सबसे
और एक नहीं, भगवान हमारा साथी है तो क्या नहीं हो सकता है, हिम्मत है बच्चे
बदले बाप
खुदा है, सब कुछ होता है सब कुछ सोचता भी है
होगा,
लेकिन बात एक ही खाली हमारा दिमाग में चलता है जब कैसे घुसे
घुसे
अपना
बताया ना तरीका बताया कि क्यों नहीं घुसता है, अच्छी बात लोगों की बुद्धि में क्यों नहीं घुस रही है, क्योंकि जो रास्ता हम पकड़े हुए हैं वो सृष्टि का रास्ता ही गलत हो गया है, सृष्टि बनाने का, सृष्टि तैयार करने का, सृष्टि चलाने का, सृष्टि की पैदाइश करने का जो तरीका है बुद्धि में वो गुमूत की सृष्टि बनाई हुई है, द्वापर युग से,
इसीलिए तो आदमी का दिमाग कमजोरी होते जा रहा है दिन से दिन,
कमजोर होता जा रहा है, मन बुद्धि लगातार चारों तरफ दुनिया में फैल रही है, रात को सोते समय भी मन इधर उधर भटक रहा है तो उसका कोई तरीका भी तो भगवान बताता होगा, भगवान अभी आकर के तरीका बता रहा है, देखो तन बल जो है इस तन का बल शरीर का बल ये भी छीन होता है, तन बल मनुष्य समझता है कि हम बड़े पहलवान बन जाएंगे हम सारी दुनिया को जीत लेंगे सबके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, तन बल तन के आधार पर धन कमाते हैं पैसा बैंक बैलेंस भरपूर करते हैं उसके आधार पर बहुत नशा चढ़ता है हमने इतना धन कमा लिया
नाम भी हुआ
बहुत नाम हो जाता है बड़ा साहूकार आदमी तो तन बल धन बल और कुरवा गोता बहुत लंबा चौड़ा हो जाए, बहुत भांति बढ़ जाए, बहुत दोस्त बढ़ जाए, बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाए, वो है जनबल। किसी का परिवार बहुत बड़ा होता है तो उसको नशा रहता है, हमारा कुछ क्या बिगाड़ सकता है, हमारा कुरवा गोता हमारा परिवार कितना बड़ा है, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। जनबल, ये तीन बल जो है मनुष्यों के पास बहुत अहंकार बढ़ाने वाले हैं, लेकिन जो असली बल है जो हमें जन्म से ही मिला है भगवान से, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो है मनोबल। मनोबल जब से आदमी पैदा हुआ है उसको भगवान से दात मिली हुई है मनोबुद्धि की। हर आदमी इनको अपने तरीके की मनोबुद्धि मिली हुई है, इनको अलग मिली हुई है, इनको अलग मिली है, इनको अलग मिली है, भगवान की दात मिली है, उसकी कदर नहीं करना चाहिए। पहले तो हम मन बुद्धि की कदर करें। मन का क्या हाल है, धन इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तन की ताकत बढ़ा रहे हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तन की ताकत बढ़ा रहे हैं, जनबल की ताकत बढ़ाने के लिए कितना हम टाइम देते हैं, लेकिन मनोबल की ताकत बढ़ाने के लिए किसी के पास कोई साधन नहीं है।
वही बोल रहा
हूँ, भगवान आ करके बता रहा
है।
क्या बता रहा है, बच्चे सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारा मन चारों तरफ भटक रहा है, इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, धन तो इकट्ठा कर रहे हैं बैंक में लेकिन मन बिखर रहा है,
ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए,
तो मन जो है बिखर रहा है। अब भगवान आकर के बताते हैं, बच्चे मन को अगर तुम्हें एकाग्र करना है तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो, तुम एक बिंदु आत्मा बैठ जाओ, याद देह की स्मृति से बुद्धि हटा के इस स्टार को याद करो, प्रैक्टिस करो, कितनी देर इस पे स्थिरियम दिमाग को रख सकते
हैं, चलते
फिर प्रैक्टिस करने से क्या नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट,
प्रैक्टिस परफेक्ट
गीता में भी लिखा है, अभ्यास है तो कौनते वैराग्य में चल रही थे,
टाइम नहीं मिलते बाबा जी,
टाइम
इधर अभी हमको
तो, अब आप तो नौकरी से भी मुक्त हो गए,
हम तो लोग मतलब बात
तो दूसरों की बात छोड़ दीजिए, आप तो नौकरी से भी मुक्त हो गए, आपके पास टाइम ही टाइम है,
टाइम ही टाइम है,
हाँ तो आप उस कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो कि भगवान आकर के सिखा रहा है, वो कॉन्सेंट्रेशन का नाम है सहज राजयोग। क्या राजयोग इसलिए ये नाम दिया गया है कि दुनिया में मास्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वो मनुष्य पढ़ाई पढ़ाते हैं तो बनते हैं, मनुष्यों की पढ़ाई हुई पढ़ाइयों से ये बनते हैं, लेकिन भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं न मास्टर बनाते हैं, न टीचर बनाते हैं, न वो इंजीनियर बनाते हैं, न डॉक्टर बनाते हैं, वो आकर के राजाओं का राजा बनाते हैं। आप बताइए कोई ऐसी दुनिया की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा विश्वविद्यालय, कोई विद्यालय हुआ हो तो हमें बताओ जहां राजाई करना, कंट्रोलिंग पावर ग्रहण करना किसी ने सिखाया हो?
नहीं सिखाया।
ये मन को कंट्रोल करना, जितना हम मन को कंट्रोल करेंगे उतनी हमारी इंद्रियां कंट्रोल होंगी। इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है, मन जीते जगत जीत कहा जाता है, मन को जीत लिया माना सारी माया को जीत लिया। ये भगवान आकर के हमको मन की कंट्रोलिंग सिखा रहा है, अब भगवान सिखा रहा है तो हम क्यों नहीं सीखेंगे? एक बार ये पहचानने की जरूरत है कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है। 70 साल पहले जब भगवान आया था और न इस दुनिया के विनाश की सामग्री तैयार कराई, नाम निशान भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं था, एटम बम क्या चीज होती है। 70 साल के अंदर ही भगवान इस सृष्टि पर आया और इस सृष्टि जो पुरानी दुनिया दुखदायी सृष्टि है इसके विनाश का सामान भी तैयार कराना शुरू कर दिया। दोनों चीजें तैयार हैं, ज्ञान के आधार पर नई दुनिया का संगठन तैयार हो रहा है, गांव गांव में, शहर शहर में वो ब्राह्मणों की दुनिया तैयार हो रही है ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा की औलाद को ही ब्राह्मण कहा जाता है, शिव की औलाद को शैव कहा जाता है, विष्णु की औलाद को वैष्णव कहा जाता है। मन एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे की अर्थ में या फॉलोअर की अर्थ में, ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा के फॉलोअर्स वो ब्राह्मण होंगे, जिनकी औलाद जैन होंगी, एक मात्रा बढ़ गई ना। तो ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के लिए अब ब्राह्मणों के द्वारा कार्य हो रहा है, संगठन तैयार हो रहा है। आप कहें कैसे हम माने, प्रूफ बताओ, प्रूफ चाहिए ना। तो आपने सुना होगा ब्रह्मा विश्वविद्यालय का नाम कभी सुना, ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुना, नहीं सुना। अब आप प्रैक्टिकल में देख आइए जगह, अभी इस धरती पर गांव गांव में, शहर शहर में और देश देशांतर में ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खुले। हमारे ऊपर विश्वास मिल गया, हम तो दीगर आदमी हैं, आपके जो संगी साथी हैं उसी लाइन के, आप उनसे बात कर लीजिए। हम आपको सिर्फ ले चल के दिखा सकते हैं कि इंडिया के हर शहर में, इंडिया के हर गांव में वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय फैले, जिनमें ऐसे ही सफेद पोषधारी ब्राह्मण जो है तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान के लिए सेवा कर रहे हैं। प्रूफ तो पक्का मिल रहा है उनका हेड ऑफिस में, उनका
हेड ऑफिस तो हमने वृंदावन में देखा,
वृंदावन में भी है ब्रह्मा कुमारी। लेकिन ब्रह्मा के जो ब्राह्मण बच्चे पैदा होते हैं, ब्रह्मा ने मुख से जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान का नाम पड़ता है वेद, कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। उस वेदवाणी को सुन करके जो ब्राह्मण पैदा हुए वो दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक होते हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण जैसे गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे, और एक होते हैं रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे निष्कष्ट नीची कोटि के ब्राह्मण। नीची कोटि के क्यों, मुख से बोलते तो ज्ञान ज्यादा है
काम करते,
लेकिन प्रैक्टिकल कर्मों में वो ज्ञान देखने में नहीं आता। तो ऐसों की संख्या बहुत होती है। अभी भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तो ढेर के ढेर खुले हुए हैं, लेकिन उनमें निष्कष्ट ब्राह्मण ढेर सारे फैले। तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संगठन अलग से तैयार होता है वो फिर कहा जाता है, जो बाप को भी जानते हैं और अम्मा को भी जानते हैं। या कोई बच्चा ये कहे कि हमारी अम्मा का नाम ये है, उसे कोई दूसरा पूछे अम्मा का नाम बताते हैं तुम बार बार, उन्हें बाप का नाम क्यों नहीं बताते, कहते नहीं माँ माँ से ही, माँ ही दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ है, माँ के ही हम बच्चे हैं, बाप तो कोई बात नहीं, बाप तो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब कि औरत संतान है या चोरी चकारी की सौलाद है। कोई बच्चा अपनी माँ का बार बार नाम बतावे और बाप का नाम न बतावे, उसे क्या साबित हुआ, असल बाप की औलाद है या नकली बाप की औलाद।
वो तो बहुत दूर का बात है, लेकिन बच्चे जो समझता है इतना ही, जो जो हम जो माँ का घर,
माँ के घर से पैदा हुए, माँ की माँ ने हमको अपना ही परिचय दिया है,
इतने बाप का मालूम पड़ता है।
बाप का परिचय हमारी माँ ने नहीं दिया, इससे मतलब हो जाता है कि निवृत्ति मार्ग की औलाद है, प्रवृत्ति मार्ग की औलाद नहीं है। एक भारत देश में सिर्फ देवी देवता ही ऐसे हुए हैं जो प्रवृत्ति मार्ग की औलाद है, और बाकी ये क्रिश्चियन, ये मुसलमान, ये सिख है, ये ईसाई, ये सब निवृत्ति मार्ग वाले, मात पिता दोनों को नहीं मानने वाले हैं, ये सब निवृत्ति मार्ग वाले धर्म है दुनिया में जो फैले हुए हैं। भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं की स्थापना करता है, और जब स्थापना करता है तो ब्रह्मा द्वारा दो तरह के ब्राह्मण पैदा होते हैं, उनमें एक होते हैं निवृत्ति मार्ग वाले ब्राह्मण और एक होते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले ब्राह्मण। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले ब्राह्मण हैं वो बाप और माँ दोनों को पहचान लेते हैं। बाप कौन है, बाप है वो शिव शंकर भोलेनाथ, माँ कौन है, ब्रह्मा माने ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, दुनिया की बड़े से बड़ी माँ। माँ क्या करती है, माँ बहुत सहन करती है, माँ जितना बच्चे की पालन पोषण में सहन करती है इतना कोई करता नहीं है। तो ब्रह्मा ने इन ब्राह्मणों की पैदाइश में और इनकी पालन पोषण में जितना सहन किया उतना आज तक कभी किसी ने न किया है और न कभी कोई करेगा। लेकिन उस ब्रह्मा के अंदर बीज डालने वाला अहम बीज प्रदत्त पिता वो कौन है, ये प्रदत्त की बात गीता में बोला हुआ है कि मैं बीज डालने वाला पिता हूँ, ज्ञान का बीज मैंने डाला है जो ब्रह्मा के मुख से निकलता है वेदवाणी। तो 70 साल पहले परमात्मा ने आके वो ज्ञान का बीज भी डाला। माउंट आबू को संस्थान तो खुला हुआ है लेकिन उसमें से जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो भी अभी दुनिया में फैल रहे हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। जैसे 5 पांडव थे बहुत मुट्ठी भर थोड़े से, और बाकी कौरव और यादव ढेर के ढेर चारों तरफ। अच्छा अभी अभी यही स्थिति है। ये 7 दिन का कोर्स लेने के बाद आपको सारी बात समझ रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं देना, 1-2 घंटा रोज बस। लेकिन ब्रह्मचरी पूर्ण
अभी तो ब्रह्मचरी है और क्या है।
अरे नहीं नहीं, 70 साल के लोग खुद से पैदा करते रहते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ये आपकी वृत्ति अलग है।
1-2 घंटा प्रतिदिन समय दीजिए।
अब तुरंत दान मां कल्याण ज्यादा अच्छा कहा जाता है क्या? अच्छे काम के लिए कोई कहे हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर अच्छा अच्छा कहे कि चल पड़ा तो अच्छा नहीं है। अच्छा कब है? जो अच्छा कहा वो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पता नहीं एक पल में क्या से क्या हो जाए, इसलिए तुरंत दान महाकल्याण कहा जाता है।
बाबा माँ जो संतान पैदा करते हैं बाय जेनरेशन, संतान के लिए पिता माता सब कुछ करते हैं बाय जेनरेशन। अभी जो बदल गई है, जो हम लोग पेपर में और सामने देख रहे हैं, जो संतान को पालन किया पोषा सब कुछ किया उसका बाद उसको जो देने को था वो भी दे दिया, उसका बाद देख रहा है वो संतान अपोजिट हो गया। क्यों हो गया आपको तो समझ नहीं आता।
हम आपको समझाते क्यों हो गया, इसलिए अपोजिट होता जा रहा है। ये जो संतान की पैदाइश की प्रक्रिया है ये गुप्त होती है।
वो तो गुप्त होती है,
गुप्त होती है, लेकिन उस गुप्त में एक बात और है। माँ जैसे अभी बताया ना, कोई बच्चा अपनी माँ का परिचय मत देता है लेकिन बाप का परिचय नहीं देता,
नहीं देता।
तो ऐसे ही माँ कोई विचारणी हो जाती है, बस खून दूसरा आ गया तो वो जो दूसरा खून आया हुआ है बच्चा तो यही कहेगा कि माँ का बच्चा हूँ, और माँ जिसको बाप बताएगी उसी का बच्चा बताएगा, लेकिन खून तो बदल गया। अब घर घर में ये हो रहा है, बताया नहीं जाता, ये अंदर ही अंदर गुप्त सब चल रहा है। खून खराब हो रहे हैं घर घर में, किसी को पता नहीं चल रहा है खून खराब हो रहे हैं।
ये तो आप बोला एकदम बड़ा बात, लेकिन हम लोग जैसे सुनता है इतना और सुनता है पूर्व जन्म के ऐसा कोई फल होता है?
बिल्कुल बिल्कुल, कितने जन्मों से 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है। जब से हिस्ट्री मौजूद है तब से समझो दुनिया दुख की दुनिया शुरू हुई है, उससे पहले दुख की दुनिया नहीं थी। आदमी दिन कब गिनता है, दुखों में दिन गिनता है या सुख में दिन गिनता है? आप सोच के बताइए, दिन गिनने का काम आदमी सुख के दिनों में करता है या दुख के दिनों में करता है?
दुखों में दिन में करता
है, दुख में दिन गिने जाते हैं। तो ये हिस्ट्री दिन गिनने की जो आई है ना, ये 2500 साल की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। एक एक दिन आदमी गिन रहा है, 2500 साल हो गया, उससे पहले की हिस्ट्री कोई किसी के पास है ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं मिल रहा है। वो सुख की सृष्टि थी 2500 साल पहले, सत्ययुग और त्रेता था, अभी द्वापर द्वैतवादी सृष्टि बन गई है, माँ और बाप दोनों मिलकर के एक नहीं रह पाते हैं, माँ और बाप दोनों मिलकर के एक हो जाए माने विष्णु का राज्य हो गया, स्त्री और पुरुष दो हाथ वाले होते हैं ना, दोनों मिलकर के चार हाथ बन जाते हैं, चारों हाथ का जो राज्य है वो ही वास्तव में विष्णु का राज्य है, वो विष्णु का राज्य देवताओं का राज्य था सत्ययुग और त्रेता में, रामकृष्ण की दुनिया में आज वो राज्य नहीं है, आज राक्षसों का राज्य द्वैतवादी राज्य, द्वैतवादी राज्य में द्वैत से पैदा होते हैं दैत्य, और अद्वैतवादी राज्य होता है जहाँ दूसरा नहीं होता है, माँ बाप दोनों मिलकर एक होकर के काम करते हैं, वो है देवताओं का राज्य। भगवान अब आकर के ये द्वैतवादी राज्य को खत्म करके अद्वैत देवताओं का राज्य स्थापन करने वाला है।
त्रेता युग तक सब था,
सब ठीक था,
लेकिन द्वापर तक
दो आपर का मतलब ये दो
द्वापर तक सब
द्वैत कर दिए,
उलट पलट हो गए,
आप अपने आप ही ज्ञान बोलना शुरू कर दिए। ज्ञान माने सच्चाई, जानकारी, किस बात की जानकारी, सच्चाई की जानकारी।
सब तक के लिए राम लड़ाई किया थे सत और सती के लिए, लेकिन उल्टा हो गया द्वापर में आके व्यभिचारी के लिए
नहीं
भी ध्वंस हुआ और शैलाचारी के लिए ई भी ध्वंस हुआ, पांच ग्राम मिलने से उसका तो कोई हर्जा नहीं।
एक बात बता, राम का राज्य त्रेता युग में बताते हैं शास्त्रों में,
राम तो ये भी सोचता तो देखते या सीता गया जाने तो फिर दूसरा सीता मिल जाए, लेकिन नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा, यह तो ये हमारा सत है कि मेरा सती है।
राम राज्य की कितनी महिमा शास्त्रों में की है, राम राज्य की महिमा के आधार पर महात्मा गांधी जी ने कितना बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया, हम राम राज्य लाएंगे, जिस राम राज्य की इतनी महिमा है उस राम राज्य में राम की क्या हालत दिखाई दी है कि उनकी ही सीता चोरी हो गई, अरे राजा राम की ही रानी सुरक्षित नहीं है, वो राजा प्रजा की क्या सुरक्षा करेगा, ये बात बुद्धि में नहीं है, ये शास्त्रों में विरोधाभास है, मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों में बहुत अगड़म पगड़म है, असली बात भगवान आगे बताते हैं कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो ये दुख की दुनिया भरपूर हो जाती है कलयुग के अंत में, उस कलयुग के अंत की दुनिया को पलट करके मैं सत्युग की सतोप्रधान दुनिया बनाता हूं, अभी कलयुग का अंत है लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग के हजारों साल है,
एक साठ लाख बोलता है
तो
अब 60 लाख,
अब जब हजारों साल बता दिए तो सब मस्त हो गए, अरे अभी की दुनिया ऐसी चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एटम बम हमारे घर की सजावट के लिए नहीं बने हैं, ये बने हैं ये तो कुछ कर गुजरेंगे,
মন্দির করবো না কি জড়ের মন্দির করবো, চৈতন্য হচ্ছে যতক্ষণ আত্মা থাকে ততক্ষণ এটা চৈতন্য, আর যেমনি আত্মা চলে গেল এটা তখন জড় হয়ে গেল মুদ্রা হয়ে গেল, ওই মুদ্রাটাই কি তুমি একটা মন্দির করবে, মুদ্রাকে মন্দির বানা হয়, মুদ্রাকে মন্দির বানা হয়ে গেল না চৈতন্যকে মন্দির বানা হয়ে গেল, বলে আমি ফেসলা করবো,
कटाक्ष वाली बात बोलने से
गड़बड़ हो जाए, हम बोलते हैं आप जो बोला है मुद्दा, जितना मंदिर मस्जिद और गिरजा ऑल ओवर द वर्ल्ड बन रहा है, आप उसको क्या सोचेंगे, कैसे मुद्दा बनता है और उसका कैसे जिंदा बनता है,
वो भावना का भाड़ा मिल रहा
है, जितना मंदिर हो रहा है तो बोला ना जगह का नाम वृंदावन वृंदावन में आप जितना मंदिर देखा और कितना बोला 6,000 ना 7,000 मंदिर है तो उतना तो देखने का संभव नहीं।
एक बात और, एक बार वृंदावन में जाके देख लीजिए न देख पाई हो, वृंदावन में जितना बेविचार भ्रष्टाचार वहाँ के मंदिरों में बैठने वाले पुजारियों में पनप रहा है।
ये तो आप ठीक बोला है,
पब्लिक है
सब जगह में आए, आप वृंदावन में हर जगह में आए,
हर जगह की बात, हरिद्वार
हर जगह में आए,
वृंदावन काशी में चले जाओ।
ये बोलता है ना मूर्ता का कोई सवाल नहीं है, जो मंदिर बन रहा है, जो मूर्ता हो और जिंदा हो और चैतन्य हो, लेकिन बन तो रहा है। कैसे बन रहा है? पैसा से, करोड़ 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 रुपया में एक एक मंदिर जो बनाता है, हम तो ताज्जुब हो जाता है, बाप रे बाप क्या बन रहा है। लेकिन इधर में क्या भक्ति है, न ज्ञान है, न कोई मार्ग है।
फिर बताओ, जब मनुष्य ऐसा मंदिर बना सकता है तो भगवान कैसा मंदिर बनाता हो? देवताओं का मंदिर तो भगवान
बनाता है, वो भी तो देवता ही मंदिर हो रहा है।
एक देवता का नहीं, 33 करोड़ देवताओं का मंदिर बना के जाता है।
33 करोड़ का मंदिर बना तो जाता हूँ हमको मालूम नहीं, लेकिन जो मंदिर बनाता है सिर्फ तीनों का, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का,
वो
और साथ में महामाया को, महामाया और महाकाली,
वो शुरुआत है, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये है शुरुआत। फिर 3 से 33 करोड़ जब बढ़ जाते हैं तो त्रेता का अंत हो जाता है,
बढ़ जाते
हैं, जनरेशन धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम नहीं बढ़ती,
बहुत तेज बढ़ती है,
धीरे 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 हजारों साल लग जाते हैं।
भक्ति मार्ग कैसा है, जब वृंदावन में धर्म का आधार में साइक्रो देवदशी रख दिया, साइक्रो देवदशी रख दिया धर्म का आधार पे,
वो पहले था अभी नहीं,
अभी बहुत इटा नॉमिनेशन को देखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे बेसी देवदशी हो वृंदावन।
एक बात और,
तभी के लिए चिंता भावना कर
शास्त्री भाई जो है वो क्या हुआ,
वो भाई अभी वहाँ बहुत बड़ी धर्मशाला मंदिर बना के बैठे हुए वृंदावन।
अच्छा, सुशील भाई के
उनका कहना यह है, ये ज्ञान आपका बिल्कुल सच्चा है, लेकिन इस दुनिया में लोग जो है इस ज्ञान को मानेंगे नहीं, अभी जब तक हम भक्ति के तरीके से उनको भक्ति का आडंबर हमारे पास नहीं होगा और हमारे पास अच्छा एकोमोडेशन नहीं होगा, हमारी बात को सुनता नहीं,
इसलिए अच्छा करके
मंदिर बना रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं,
लेकिन यही ज्ञान को मिक्स करके मुझको
बहुत ठीक बोला, एकोमोडेशन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उधर में आदमी लोग जाके भीड़ बढ़ाएंगे,
ये बात नहीं।
लेकिन पहले जो था आश्रम में आदमी लोग जाते था, कितना कष्ट करके, कितना कष्ट करके आश्रम में जाके वो ज्ञान और ध्यान बनाते, लेकिन अभी सच एकदम एकोमोडेशन होना चाहिए, एकदम
चकमक चकमक होना चाहिए,
दिखावा क्रिश्चियंस में ज्यादा हुआ है, जो भारतीय परंपरा है दिखावा करने की नहीं है, दिखावा करने से सच्चाई थोड़े समय के लिए सच्चाई प्रत्यक्ष तो होगी दिखावे से, लेकिन ज्यादा सजा सजाया माहौल देखेंगे उसमें बच्चे घुस पड़ेंगे, बच्चा बुद्धि
उसे तो हो रहे हैं ना, उसे तो हो रहा है,
सालिम बुद्धि है, वो दिखावा को पसंद नहीं करते, वो अंदरूनी चीज को
पसंद, लेकिन आदमी लोग इसको पसंद करते ज्यादा,
तो इसलिए उन्होंने बड़ा बड़ा स्थान लेकर के
मंदिर
बनाया,
बाबा
से
वो कर्म करते मान लो समझो कि हमारी इच्छा है कि हम विद्वान बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन वो इच्छा बहुत धीमी है और उसके लिए हमने धीमे धीमे प्रयत्न किया, बीज तो पड़ गया इच्छा का,
लेकिन वो जल्दी फलीभूत नहीं होगा। हो सकता है दो चार आठ दस पंद्रह बीस पच्चीस जन्म लग जाए। और एक ऐसी इच्छा शक्ति है, बड़ी तीव्र इच्छा